आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, आप मिले मिट गई मन की सभी चाह, खुशियों के गीत मिले मिटी आह आह, प्यास बुझी पाए है सागर अथा, वाह बाबा वाह वाह बाबा वाह।
ओम शांति। मैं हमेशा ही बहन को कहता हूं कि मेरा परिचय जो सच्चा परिचय है वो तो आप देते नहीं हो, मैं एक आत्मा हूं और परमात्मा के संतान हूं, ये मेरा सच्चा परिचय है। बाकी तो ये सारे जो भी है ईश्वरीय सेवा की जिम्मेदारियां मिली हुई है वो तो समय समय के साथ साथ बदलती रहती है, ऊपर नीचे भी होती रहती है। आप सबके साथ कल की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने सुनाई उसके बारे में थोड़ा विचार सागर मंथन करने का मुझे मौका मिला है। गुलजार दादी स्टेज पर आए 7:35 को आए और 7:47 को ही ध्यान में गए और ध्यान में ही उसी सेकंड में बाबा की प्रवेशता उनके अंदर हो गई। 7:47 से 7:56 तक बाबा ने दृष्टि दी और उसके बाद मुरली चलाई। मुरली जो है करीब 49 मुरली चली, मुरली चली उसके बाद स्टेज के ऊपर बाबा का कारोबार हुआ और बाबा हम बच्चों से विदाई लेकर के 9:35 पर गए। ये इस प्रकार से कारोबार है। दो बातें मुझे पहले कहनी थी। कई बार हम समझते हैं कि हमने परमात्मा को पहचाना है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमने बाबा जो मुरली में कहता है मैं जो हूं जैसा हूं, इस प्रकार का मुझे बहुत कम बहनों या भाइयों ने पहचाना हुआ, ये हकीकत है। पिछले टाइम बाबा ने जो मुरली चलाई उसके अंदर आपने देखा होगा कि बाबा गुलजार दादी ध्यान में कब गए, बाबा के प्रवेश कब हुई वो मालूम नहीं पड़ा। तो कहीं कहते थे अरे ये तो गुलजार दादी ही थे, बाबा आया ही नहीं है। और कहीं कहते थे कि और इनफैक्ट हमारी रोजरी पर एक बड़ी अपने सीनियर बहन ने भी लिखा हुआ है कि बाबा का आवाज बदली हुआ था, जैसे कि हम बाबा को उसकी आवाज से पहचानने की कोशिश करते हैं। आवाज से पहचानना और वास्तविकता का क्या परिचय है उसके बीच का फर्क समझना पड़ेगा। और आप में सब उस टाइम तो थे नहीं, ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते थे, कभी तो गुलजार दादी के तन में आते हैं जाते हैं तो मालूम पड़ता भी है, कल मालूम नहीं पड़ा गई गुलजार दादी और आ गए। ऐसा ही बाबा का साकार बाबा के तन में होता था, कभी कभी आया कभी गया, कभी आया कभी गया, वो मालूम ही नहीं पड़ता था। ब्रह्मा बाबा कहता था कि मुझे हमेशा ही तैयार रहना पड़ता है कि बाबा वो जो बाप जो है अव्यक्त बाप जो है वो कभी चला जाएगा तो उसके बाद उसके साथ में उसी जिस लिंक में बाबा मुरली चलाते हैं अव्यक्त बाबा, वही लिंक में वही स्पीड से वही रफ्तार से वही विचारधारा के आधार पर मुझे मुरली चलानी पड़ती है। फिर मुरली चलाते थे, कभी मुरली चलाते चलाते श्री बाबा आ जाते थे, कई बार ऐसा होता था। मुझे याद है एक बार एक सन्यासी जो है पांडव भवन में आया हुआ था, पांडव भवन में आया था, 3-4 रहा और जैसे कि बहुत बाबा का बच्चा बन गया है इस प्रकार का रहा। और फिर वो जा रहा था, उसने बाबा को कहा, साकार बाबा को कहा कि बाबा मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे बॉम्बे के सेंटर पर रहने के लिए चिट्ठी दे दो। साकार बाबा ने चिट्ठी लिखने के लिए यीशु दादी को कहा कि तुम चिट्ठी लिख दो कि ये बच्चा आ रहा है सन्यासी है और उसका ध्यान रखना, ऐसा सेंटर के ऊपर चिट्ठी लिखने के लिए बोला। इतना बोलते थे इतने में तो अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त बाबा की ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेशता हुई और बाबा अव्यक्त बाबा ने कह दिया कि नहीं इस बच्चे को सेंटर पर नहीं भेजना है, इस बच्चे को रमेश के घर पे भेजना है, रमेश के घर पे रहेगा और रमेश के घर से ही कारोबार करेगा। फिर वो चिट्ठी लेकर के बॉम्बे में आया, बाद में जब वो निकला उसके बाद बाबा अगर के बाबा ने कहा कि देखो ये साकार बाबा जो है, साकार बाप जो है वो त्रिकालदर्शी नहीं है, ये कौन है उसको पहचान नहीं सका और बाप भी पहचान सका कि ये सन्यासी नहीं है परंतु इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया हुआ था। और इस प्रकार से बॉम्बे में आया, हमारे घर पे भी रहा, कारोबार देखा, सब कुछ किया और चला गया। कहने का तात्पर्य यही है कि अभिव्यक्त बाबा की पधरावणी कब होती है कब नहीं होती है, वो साकार बाबा के समय में आप अगर होते तो आप समझते ही नहीं कि परमात्मा बोलता है या ब्रह्मा बाबा बोलता है। इस प्रकार से कल का पिछले टाइम के भी मुरली के अंदर आवाज के आधार पर पहचानने का कोशिश करने के लिए हमारे पास भी कई भाई बहन आए कि बाबा का आज आवाज क्यों बदली हुआ था। हमने कहा आवाज बदली हुआ, बाबा बदले तो नहीं हुआ था ना, बाबा का आवाज बदली हुआ था, बाबा का शरीर जो है, रथ जो है, जिस रथ के द्वारा उनको बोलना होता है, उस रथ की तबीयत है, हेल्थ है, उसके आधार पर होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो क्या करें, हमारे बहन भाई जो है बाबा को जिस प्रकार से, इसलिए बाबा ने जो कहा है कि मैं जो हूँ जैसे हूँ जैसा हूँ कारोबार जो कर रहा हूँ, बहुत कम बच्चे मुझे पहचानते हैं और इसलिए हम लोग भी ऐसे ही करते सोचते हैं कि बाबा की आवाज से पहचानते हैं, बाबा का इसके करते हैं, कल भी बाबा कैसे आए और पिछले टाइम पर कैसे गए आए, ये सारी बातों को नोट करते रहते हैं परंतु वास्तविकता कुछ अलग ही है। वो अलग वास्तविकता जो है उसको समझने की आप मेहनत करनी पड़ेगी, तब मानेंगे कि परमात्मा जो है जैसा है ऐसा हमने उनको पहचाना है। परंतु बाबा, इसलिए बाबा ने कहा है कोटों में कहो और कहो में भी कहो मुझे पहचानते हैं, ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। और यहाँ इतने हजारों के कल 25,000 बैठे थे, उसमें कितने बाबा को पहचानते हो गए सही रूप में, वो तो ड्रामा ही जा रहे हैं। कल की मुरली के बारे में मैं सोच रहा था कि मैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कहाँ से शुरू करूं, शुरू से शुरू करूं या अंत से, आदि से अंत कर जाऊं या अंत से आदि के ऊपर जाऊं, सोच रहा था। तो पीछे मुझे ख्याल में आया कि कल आप जानते हैं इंदौर जोन के ओम प्रकाश भाई के कनेक्शन का ग्रुप था और इसलिए ओम प्रकाश भाई के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के लिए उन्होंने जो बाबा से बात किया उससे मैं मुरली के कारोबार के बारे में शुरुआत करता हूँ। ओम प्रकाश भाई इंदौर ने बाबा को कहा कि तबीयत ठीक है और ओम प्रकाश भाई ने बहुत एक नई बात, अच्छी बात सुनाई। हम सब भी इसी इतनी उम्र तक बीमार नहीं पड़े हुए, उन्होंने कहा कि बाबा पहली बार बीमार हुआ हूँ। इस प्रकार से देखो ये कितनी सुंदर बात है कि इतनी बड़ी उम्र तक बीमार नहीं पड़े। हम लोग तो क्या होता है छोटी छोटी बातों में भी बीमार हो जाते हैं, पर बड़े बाबा ने कहा उनको सबकी मदद से बाप के साथ से आगे बढ़ते चलो, ठीक चल रहे हो आगे बढ़ते रहो, तबीयत ढीली है थोड़ी है ढीली लेकिन ठीक हो जाएगी, अच्छा है संभाल से चलते रहो। ये उनके साथ जो बात किया वो तो आप सब समझ गए होंगे कैसे बाबा ने उनसे बात किया। बाबा ने फिर उनको एप्पल दिया, वो सर बात आप लोगों ने नोट किया होगा। उसके बाद कमलेश बहन जो है अटकटक की, उन्होंने वो भी बाबा से मिले, बाबा ने उनको भी कहा ठीक है अच्छा है। तो कमलेश बहन ने कहा कि आपकी ब्लेसिंग से ठीक है, तो बाबा ने जवाब दिया कि ब्लेसिंग तो सदा है ही। इसके बाद जो बाबा ने महावाक्य उच्चार किए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बाबा ने कहा जो भी तबीयत में थोड़ा बहुत होता है तो समय कलयुग का है, कलयुग के अंदर आप जानते हैं सतयुग के अंदर तो बीमारी आदि की बात ही नहीं होती है। इसलिए बाबा ने जो कहा तबीयत में जो थोड़ा बहुत होता है उसका कारण क्या है, समय कलयुग का है, इसमें यह सब आता ही है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी बाप की याद में सूली से कांटा बनाना है, आवे कितनी भी आवे कितना भी परंतु सूली के रूप में, लेकिन बाप की याद से सब कांटा बन जाएगा। ये शरीर के व्यवहार की बातें हैं, मेरा जीवन का भी अनुभव यही है। मैंने भी ब्रह्मा बाबा को पहली बार जब देखा बॉम्बे के अंदर, उनको किडनी का प्रॉब्लम था, किडनी का स्टोन का, इसके कारण आबू से बॉम्बे लेके आए थे, हॉस्पिटल में थे, और मेरी लौकिक माता जी ने मुझे कहा कि ब्रह्मा बाबा को हॉस्पिटल में दाखिल किया है, आप आएंगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। मैं गया हॉस्पिटल में, पहली बार बाबा को मैंने देखा। बाबा हॉस्पिटल के बिस्तर पर सोए हुए थे, बाबा को मैंने देखा तो मुझे बाबा की शरीर की जो भाषणा जो थी वो मुझे, मैंने अजंता एलोरा के बॉम्बे में, बॉम्बे से थोड़े दूर 200 किलोमीटर दूर गुफाएं हैं, उसमें एलोरा की गुफा के अंदर एक गौतम बुद्ध का स्टैचू है, सोया हुआ बुद्धा स्लीपिंग ऑन द रॉक्स, अर्थात बुद्ध जो है वो पत्थर की शिला के ऊपर सोए हुए हैं, और वो उसकी इतनी सुंदर भव्य मुद्राएं उनके मुख के ऊपर थी। उस प्रकार से मैंने ब्रह्मा बाबा को भी देखा तो मुझे लगा कि एक धर्म स्थापक जो है, धर्म स्थापक के व्यवहार के चिन्ह सामुदायिक से चिन्ह कैसे होते हैं, इस प्रकार का सामुदायिक चिन्ह मुझे को बाबा के मुख से दिखाई पड़ा। और मैंने बाबा को कहा कि बाबा आपका ऑपरेशन हुआ है, देखिए बाबा से कैसे ज्ञान शुरू हुआ मेरा, ज्ञान का पार्ट। बाबा ने कहा नहीं मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने कहा नहीं आपका ऑपरेशन हुआ है, तो कहा नहीं मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। तो मैंने मेरी लौकिक माता जी के सामने देख करके कहा आपने तो कहा कि ब्रह्मा बाबा का ऑपरेशन हुआ है और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, और ब्रह्मा बाबा तो कहता है कि मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मेरी माता जी भी मूंझ गई, इन्होंने भी ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा आपका ऑपरेशन तो हुआ है। तब बाबा ने उस पहेली को उसका हल निकाला और कहा कि बच्चे मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, मेरे शरीर का ऑपरेशन हुआ है। मैं और मेरा शरीर अलग है, और इसलिए शरीर का ऑपरेशन हो सकता है, आत्मा का ऑपरेशन कैसे हो सकता है? आत्मा तो अजर अमर है, और इसलिए अजर अमर आत्मा का ऑपरेशन नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से कहकर के बाबा ने करीब 40-45 मिनट तक बाबा ने मुझे मैं आत्मा हूँ, कैसे आत्मा हूँ, क्या हो, इस प्रकार का ज्ञान दिया। इस प्रकार से ज्ञान का बीज मेरे अंदर जो है ब्रह्मा बाबा ने साकार बाबा के रूप में हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बिस्तर पर सोए हुए दिखाया, से बताया। इस प्रकार से कई बार कईयों के साथ परिचय हुआ बीमारी का। बाबा का तो उस टाइम 52 के बाद है। उसके बाद दूसरा एक अनुभव सुनाऊं, बाबा के लौकिक युगल जो है जसोदा माता भी बॉम्बे के हॉस्पिटल में थे, उनको भी कैंसर हुआ था। अगली सर्जरी छूटा, उसके अगले दिन शाम को मैं उनको हॉस्पिटल में मिलने के लिए गया। हॉस्पिटल में गया तो मेरे को कहा रमेश ये टोली खाओ। मैंने उनको कहा कि माता जी मैं आपकी तबीयत की जांच करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ टोली खाने के लिए नहीं आया हूँ। तो बाबा जसोदा माता ने कहा रमेश अभी मिलना जो हुआ है वो ठीक है, दोबारा कभी मिलना होगा इसके लिए मैं आपकी पूरी खातरी करती हूँ और टोली खिलाती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप खिलाते हो तो मैं खाता हूँ। और ये सचमुच लास्ट मुलाकात थी। दूसरे दिन दोपहर में ही 2:30 बजे जसोदा माता ने शरीर छोड़ दिया। इस प्रकार से शरीर छूटना आना जाना सबका काम होता ही रहता है। दादा विश्व किशोर का भी हमने देखा कैसे हॉस्पिटल में ही ऑपरेशन के बाद 5वें दिन उनका शरीर छूट गया। इस प्रकार से कईयों का होता ही रहता है। तो ये जो बाबा ने जो कहा है कि सूली से कांटा बन जाता है, ये आप सबने तो कल पहली बार सुना होगा। मेरे पास अनुभव है, अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद शहर के अंदर सेवा केंद्र की शुरुआत हुई, वहां पर उषा जी जो है हमारी द्रौपदी युगल जो थी वो वहां सेंट्री इंचार्ज थी और वहां पर क्लासेस कराती थी। रहती थी क्लास के अंदर बहुत लोग आते थे, उसमें एक डॉक्टर के एम चौकसी करके आते थे, वो दांत के डॉक्टर थे परंतु अहमदाबाद के पहचान वाले थे, इसलिए बाबा ब्रह्मा बाबा कई बीमार बहनों को भेजते थे और उषा को कहते थे कि आप डॉक्टर चौकसी को कहो इन बीमारियों की तंदुरुस्ती, मतलब इन बीमार बहनों की तंदुरुस्ती दूर करने का प्रयत्न करें। तो एक दिन डॉक्टर चौकसी ने उषा को कहा कि आप ये सब बहनें तो राजयोगी बहनें हैं, पवित्र बहनें हैं, और ये पवित्र बहन होते हुए भी इस प्रकार से बीमार क्यों होती है। तो उषा ने कहा वैसा मैं क्या जानूं, आप बाबा को पत्र लिख करके दो कि बाबा ऐसी ऐसी बहनें यहाँ आती है, पवित्र रहती है, खान पान की शुद्धि है, सब कुछ होते हैं, उनको बीमारी क्यों होती है, क्यों होता है। उन्होंने पत्र लिखा बाबा को और उषा ने बाबा के पास वो पत्र भेज दिया। बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बच्चे आप सब मुरली बराबर सुनो, आप लोग मुरली बराबर सुनते नहीं हो और इसके लिए ऐसा प्रश्न होता है। मैंने ये कहा हुआ है कि सूली से कांटा हो जाएगा, जो कल भी जो कहा ना वही बात बाबा ने उस पत्र में जवाब में लिखा, सूली से कांटा हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि सूली से जीरो हो जाएगा, कांटा के रूप में थोड़ा तो रहेगा, चुभता रहेगा। कारण क्या है, तब मालूम पड़ेगा कि बाप की मदद नहीं होती तो सूली जितना बीमारी का जो दर्द होता है, बीमारी की जो बातें होती उसको आपको अनुभव करना होता है, परंतु बाप की मदद से आपकी बीमारी जो है सूली से कांटा जैसे होगी, कांटे जैसे होने से आपको मालूम पड़े कि कांटा जैसा हो बीमारी अभी जो है बाप की मदद से, अगर बाप की मदद नहीं होती तो बीमारी का सच्चा रूप कैसे होता। आप सब हम सब जानते हैं बापर युग से हमारे शरीर की बीमारियां आदि आती रही, तो शरीर की बीमारियां का अनुभव हम सबको है। तो इस प्रकार से सूली से कांटा हो जाता है, इसका अर्थ समझना पड़ेगा। बाबा ने कहा सूली से जीरो नहीं होता है, सूली से कांटा हो जाता है, मतलब कांटा के रूप में फिर भी थोड़ी बहुत बीमारी हमको चुभती रहेगी। तो इस प्रकार से ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि बाबा ने जो कल जो कहा कि आवे कितना भी सूली के रूप में लेकिन बाप की याद से कांटा बन जाए, ये हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, ये हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि बीमारी के टाइम पर बाप की याद कैसे रहे और बाप की याद के कारण हमारा जो भी बीमारी का रूप जो है वो सूली के बदले में कांटा कैसे हो जाए। ये बहुत गुह्य बातें हैं, परीक्षा हमारे जीवन की परीक्षाओं की बातें हैं कि कैसे बीमारी आती है और बीमारी का रूप क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और बीमारी के कारण शरीर के तकलीफ हो सकती है, तंदुरुस्ती ऊपर नीचे हो जाती है तो क्या हो सकता है, कारण क्या है, ये सारी बातों को समझना पड़ेगा। क्योंकि बाबा ने जो कल कहा कि ये समय कलयुग का है, कलयुग के अंदर इस प्रकार से बीमारियां आती ही रहेगी, और इसके कारण बाबा ने कल मुरली के अंदर भी कहा संगम युग है, परंतु अंत में यहाँ जब बीमारी की बात कही तो बाबा ने कहा यह समय कलयुग का है। कलयुग का समय और संगम युग का महान समय, उस दोनों का बीच का फर्क समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा। हमारे गुजराती में कविता है टके शेर खाजा टके शेर भाजी, इस प्रकार से सबको एक समान चलाने के लिए एक समान समझने का कोशिश करते हैं, इसके कारण ज्ञान की कई बातों को हम समझ नहीं सकते हैं, ये वास्तविकता है। कल बाबा ने अपनी शुरुआत की मुरली की 7:56 को, तो उसमें उसका मुरली का टाइटल जो है हमारे राजू भाई ने लिखा है प्रभु प्यारों का संगठन संगम के इस महान समय में ही होता है। हर बच्चे के दिल में बाबा और बाबा के दिल में شکیلت بچے ہیں. شکیلت بچے کا کہیں ہوگی اور تو معلوم نہیں ہوگا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لانگ لوسٹ اینڈ ناؤ فاؤنڈ اگین, بہت سمے سے الگ ہو گئے تھے اور اب باپ سے پھر سے مل رہے ہیں. تو اس کو یہ سندھی شبد ہے, سندھی شبدوں کا ارتھ اس پرکار کا رہتا ہے. اور بابا نے نارمل مرلی جیسے چلاتے ہیں اس پرکار کا کہا, حالانکہ بابا کو پہچاننے میں بابا کی پریکشا لینے میں, ہمارے بھی کئی بہن بھائی ایسے بابا کی پریکشا لیتے ہیں, تو بابا نے اس پریکشا کا اتر دینے کے لیے کل کی مرلی میں جو نارمل پہلے مرلی چلانے کے ٹائم پر شروع کرتے تھے اس پرکار سے ہی کہا کہ آج باپ دادا چاروں اور کے بچوں کو دیکھ ہرشت ہو رہے ہیں, چاروں اور کے بچوں کو دیکھ ہرشت ہو رہے ہیں, کیونکہ ہر ایک بچہ باپ کو دیکھ ہرشت ہو ملن منا رہا ہے. خالی بابا کو دیکھ کر کے ہرشت نہیں ہو رہا ہے, پرنتو بابا نے کیا کہا, ہاں ہر ایک بچہ باپ سے ملن منا رہا ہے. بابا کا ملن منانا اور وہ بھی ساکار روپ کے اندر, بابا کو ساکار تن میں آتے ہیں, ساکار رتھ میں آتے ہیں اور اس کے اندر ملن پراپت ملن کرنا, یہ سنگم یوگ کی ہی اپلبدھی ہے. باقی تو ستیوگ تریتاد واپر کل یوگ میں بابا سے اس پرکار سے ساکار روپ میں ملنا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے بابا نے کہا کہ یہ ملن منا رہے ہیں. اور یہ ملن کیا ہے, یہ ملن کیا ہے اس کی بھی بابا نے پریبھاشا بتائی کہ یہ روحانی ملن کتنا پیارا ہے. روحانی ملن آتما کا, آتما اور پرماتما کا ملن جو ہے وہ کتنا پیارا ہے. اور یہ ملن کا کیا پراپتی کیا ہوگی, یہ بھی بابا نے بتا دیا. بابا نے بہت سرل شبدوں میں جان کی گہرائی کو دنیا ہم لوگوں کے سامنے رکھا. بابا نے کہا یہ ملن امر بنانے والا ملن ہے, ہم بچوں کو امر بنانے کے لیے ستیوگ تریتا میں ہم امر جیسے ہی رہتے ہیں, کارن کہ لمبی آیو رہتی ہے. آپ جانتے ہیں 8 جنم 12 جنم اس پرکار سے ہمارا جیون ویوہار ہوتا ہے. اور اس پرکار سے بابا نے بتایا کہ امر بننا جو ہے, اور بابا وردان میں دیتے ہیں کہ امر بھو. تو اس پرکار سے یہ ملن امر بنانے والا ملن ہے. آپ کو یہ سن کر کے خوشی ہونی چاہیے کہ بابا ہم کو امر بنا رہے ہیں. اور اس لیے بابا نے کہا کہ ہر ایک بچہ امر بھو کے وردانی بچہ ہے, ہم سب کو یہ وردان ملا ہوا ہے امر بھو کا. بابا وردان تو دیتے ہیں, اور اس وردان کے آدھار پر جیون ویوہار کیسے کرنے کا یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے. نہیں تو کیا ہوتا ہے, بابا تو بولتے رہتے ہیں. میں نے بابا کو کئی بار کہا ہے بابا آپ نے ایک غلطی کیا ہے, ساکار بابا کو بھی میں نے کہا بابا آپ نے ایک غلطی کیا ہے. بابا نے کہا میں نے کیا غلطی کیا ہے بابا, میں نے بابا ہنستے ہنستے کہا بابا آپ نے دو کان بھی ہے نا, یہ آپ کی غلطی ہے. کہا بابا کہا کیوں, میں نے کہا دو کان دیا ہے اس لیے یہاں سے گیان جاتا ہے نا, سیدھا یہاں سے ہی نکل جاتا ہے, اور یہاں سے کان گیان جاتا ہے یہاں سے نکل جاتا ہے. ایک کان ہوتا نا تو نکلتا نہیں اور اندر جاتا, آپ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر. ایک کان ہوتا تو ہم گیان برابر دھارن کر سکتے تھے. بابا کہتے ہیں میں کیا کروں, تم بچوں کو تو دو کان تو چاہیے ہی نا. میں نے کہا ہاں بابا دو کان نہیں ہوتے تو ہم چشمہ کیسے پہنتے ہیں. ہنسی کی باتیں ہیں, بابا کے ساتھ ہنسی کی باتیں بہت کرنے کی مزہ آتی تھی. بہت سی باتیں ہیں جیون کا انوبھو, بہت سی باتوں کا ہے. بابا نے کہا آپ کچھ بھی ہو لیکن بچے باپ سے مل بنانے میں سدا بزی ہے. سب سے مکھ سے کیا نکلتا ہے, واہ بابا واہ, واہ بابا واہ. یہ ہماری پرستھتی, ہماری استھتی یا اس کا ریفلیکشن ہے کہ ہمارا من میں کیا مکھ سے کیا نکلنا چاہیے, واہ بابا واہ. اور مکھ سے بابا کے مکھ سے بھی یہی شبد نکلتے ہیں کہ واہ میرے شکیلت بچے واہ. سب کے مکھ سے واہ واہ کا گیت سنائی دیتا ہے, مکھ سے سنائی دیتا ہے. ساتھ ساتھ بابا نے کہا سب کے چہرے بھی واہ واہ کا گیت گا رہا ہے, چہرہ بھی. ایسا نہیں ہے کہ سب مکھ سے بگاتا رہے, ایسا نہیں, چہرے سے بھی گا سکتے ہیں. اس پرکار سے چہرہ بھی اس پرکار کا گیت گا رہا ہے. और बाप दादा भी रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। और बाबा ने बहुत अच्छी एक नई बात कही कि सबके दिल का आवाज, सबके दिल का आवाज, ये बाबा ही बोल सकता है, क्योंकि हम लोग तो स्थूल रूप में रहने वाले, हम त्रिकालदर्शी नहीं है। बाबा ने कहा क्या, सुखदेव सबका दिल का आवाज चाहे दूर है, सारी दुनिया के अंदर कल मुरली सुनी जाती थी, इसलिए चाहे दूर है चाहे नजदीक है, लेकिन सबके दिल का आवाज रिस्पॉन्ड कर रहा है। बाप भी कहते हैं वाह बच्चे वाह, और बच्चे भी कहते हैं वाह बाबा वाह, यह वाह 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 का गीत गूंज रहा है। और ये गीत कैसे निकलता रहता है, गाना पड़ता है, गाना सिखाना, जैसे अभी मुरली के पहले मैं आज का क्लास से पहले गीत सुना, इस प्रकार से हमारा गीत निकलना चाहिए मुख से, क्या कैसे निकलना चाहिए वो भी बाबा ने बता दिया कि ये सबके फेस से ऑटोमेटिकली वाह वाह का गीत निकलता है, ऑटोमेटिक। ये जैसे श्वास हम लेते हैं, श्वास की क्रिया जो है ऑटोमेटिक होती है, हमें श्वास लेने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक श्वास निकलता है आता है, इस प्रकार से है। और आज की मुबारक सबके मुख से सुनाई दे रही है और सभी एक ही खुशी का गीत गा रहे हैं, वाह बाबा वाह, खुशी का गीत। हाँ, खुशी बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि खुशी आपका खुद का निजी खजाना है और इस खजाने को गवाना नहीं चाहिए। कुछ भी बात हो जाए, जो भी बात आ जाए, बात आएगी बात जाएगी, परंतु हमारे दिल के अंदर की जो खुशी जो है वो खुशी शाश्वत रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबके दिल में एक ही खुशी का गीत गा रहे हैं। और बाबा ने कहा कि इस समय सारी सभा के दिल का आवाज क्या है, वाह बाबा वाह, और बाप का भी आवाज है वाह बच्चे वाह, सब वाह वाह है। भले पुरुषार्थी है, भले पुरुषार्थी है, परंतु नंबर वार भी है। कल की मुरली के अंदर 8 बार बाबा ने नंबर वार की बात कही है, 8 बार। साधारण रूप में बाबा कभी नंबर वार के शब्दों की इतनी बात नहीं करते हैं, कल 8 बार बाबा ने कहा सब, हाँ सभी भले पुरुषार्थी है, नंबर वार भी है। ये नंबर वार शब्द के ऊपर मेरी ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत डिबेट होती थी। मैं बाबा को कहता, बाबा मुरली में यात्रा देते थे, उसमें कहते थे सभी बच्चों को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, तो मैं बाबा को कहता था बाबा ये नंबर वार शब्द क्यों आप बोलते हैं, सबको बोलो, सब सभी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने कहा नहीं, गुरु जाने गुरु की गोत्री जाने, बाप जानता है हाँ कि सबके पुरुषार्थ एक समान नहीं हो सकता है। मैं कहता था बाबा सबका पुरुषार्थ एक समान ही होता है, सबने अगर बाबा को पहचान लिया सबने अगर बाबा को पहचान लिया तो वैसे पुरुषार्थ भी सबका एक समान होना चाहिए। बाबा ने कहा कि तुम बच्चा नया है इसलिए तुमको मालूम नहीं है, बाप जानता है हाँ कि बच्चे इतने होते हुए भी सब इतने बच्चे हैं परंतु उसमें भी नंबर वार ही है, और इसके कारण मुझे कहना पड़ता है सबको नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार। और फिर एक आपको हंसी की बात सुनाओ, एक बार एक अव्यक्त मुरली चला है, उसके अंदर बाबा ने बहानेबाजी की बात कही, बहानेबाजी की बात कही, तो उसमें बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों को बहाने बनाने में पहला नंबर देते हैं, उसमें कोई नंबर वार नहीं है, सब पहला नंबर है, सबका पहला नंबर है बहाने बनाने में। तो फिर बाद में मुरली के बाद बाबा टोली देते थे, तो मैं गया बाबा के पास, तो बाबा ने मुझे कहा बच्चे आज तो तुम खुश है ना, आज बाबा ने नंबर वार शब्द निकाल दिया और सबको पहला नंबर दिया कि सब बहाने बनाने में पहला नंबर है। आप समझे हम सबको बाबा ने क्या नंबर दिया, सब बहाने बनाने में पहला नंबर है। मैंने कहा बाबा इसके अंदर नंबर वार कही है, नंबर वार हम बहाने बनाते हैं परंतु बाकी सब पुरुषार्थ में सबको नंबर 1 दीजिए। बाबा ने कहा नहीं, आज की मुरली का सार यही है कि सब बहाने बनाने में पहला नंबर है। तो इस प्रकार से देखो कई बातों में हम पहला नंबर है। आपको हंसी की बात सुनाऊं, दादा विश्व विश्व दादा आनंद किशोर ने बॉम्बे के अंदर हमारे कोलाबा सेंटर पर फ्रीज आया था और फ्रीज आया उसके बाद दादी नीमा शांता ने आइसक्रीम बनाया तो आइसक्रीम सबको खिलाया, सबने आइसक्रीम प्यार से खाया, क्योंकि यज्ञ के इतिहास में यज्ञ में पहली बार फ्रीज आया हुआ था और पहली बार घर का बना हुआ आइसक्रीम सबको खिलाया रहा। तो आइसक्रीम खाने के बाद दादी नीमा शांता ने सवाल पूछा सबको कि सबने आइसक्रीम खाने से पहले बाबा को याद किया, सबको बाबा सबको क्या प्रश्न पूछा कि सबने बाबा को आइसक्रीम खाने से पहले याद किया, तो किसी ने भी बाबा को याद नहीं किया। तो दादी नीमा शांता ने कहा यह ज्ञान की बात सही है, सुख में हम भगवान को कोई याद नहीं करता है, भगवान को कब याद करता है, दुख में याद करता है, सुख में सुमिरन कोई न करे, इस प्रकार का किसी ने भी नहीं किया। तो इसके कारण दादा आनंद किशोर ने पत्र लिखा ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हमारी भूल हो गई और हम इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं, साथ में एक गारंटी देते हैं कि दादी निर्मल शांता अगर दोबारा आइसक्रीम खिलाएंगी तो हम आपको याद करके खाएंगे। तो बाबा ने उनका जवाब लिखा, बच्चे कोई हर्जा नहीं, बच्चे तो भूलों के सागर हैं, सागर के अंदर एक बूंद पानी कम हो या एक बूंद ज्यादा हो इससे क्या फर्क पड़ता है, आप बच्चे तो भूलों के सागर ही हैं। मैंने बाबा को फिर पत्र लिखा, बाबा हम कहीं बच्चों कई बातों के हम सागर हैं, आप सर्वशक्तिवान हैं परंतु कई बातें आप नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। बाबा ने हमको पूछा कौन सी बातें बाप नहीं कर सकता है, मैंने कहा आप एक झूठ तो बोल के दिखाओ, झूठ बोल सकता है बाबा, बाबा ने कहा इसे मैंने कहा आप क्रोध करके दिखाओ नहीं कर सकते, आप रो के दिखाओ, सर्वशक्तिवान है तो रो के दिखा सकता है ना, हम लोग तो रो के अभी अभी बहनों को गए रोना शुरू करो तो 5 मिनट में सारी सभा रोना शुरू कर देंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बाबा तो रो नहीं सकता है, मैंने कहा ऐसे कई बातें आप नहीं कर सकते, आप सतयुग में आके तो दिखाओ, बाबा सतयुग में नहीं आके दिखा सकते, सतयुग में नहीं आ सकता है, जिस प्रकार से कई बातें जो है वो हम कर सकते हैं बाबा नहीं कर सकते, और कई बातें ऐसी है बाप कर सकता है हम नहीं कर सकते, इसलिए हम भी कोई कम नहीं है, हम भी अपना अस्तित्व में अपने मस्ती में मस्त रहे, हम भी कोई कम नहीं है, हम भी कई बातों के सागर है, गलतियों के सागर है, भूलों के सागर है, क्रोध के सागर है, रोने के सागर है, इतनी कितनी बातों के सागर हम भी हैं। तो इसलिए हमारा भी गायन है, जैसे परमात्मा का गायन है प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, इस प्रकार से हमारा भी गायन है, हम भूलों का सागर है, ऐसे कितनी बातों के सागर हैं, अगर इस प्रकार से गिनती करें हाँ तो 1008 बातों के हम सागर हो सकते हैं। हंसी की बात है, कोई सीरियसली मत लेना, पर बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सागर की बात आई तो मेरे को याद आया हाँ कि बाबा कैसे मतलब हम बच्चों को प्यार से सिखाते थे समझाते थे। कल की मुरली में फिर आगे बाबा ने कहा भले पुरुषार्थी है नंबर वार है लेकिन हरेक के मन का आवाज एक ही है, वाह बाबा वाह, सोच क्या रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, आप सबके दिल का आवाज वाह वाह का है ना, बाबा कहते हैं सकीले दे बच्चे वाह, और बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह। फिर बाबा ने कहा सब कौन बैठे हुए, तो बाबा ने कहां से भी आए हैं लेकिन यह संगठन किनों का है, तो संगठन किनों का है, और फिर बाबा ने फिर से शब्द यूज किया चाहे नंबर वार भी है, इतने सब बैठे हुए थे इन सब के बीच में बाबा ने सबको टाइटल दे दिया, सब नंबर वार ही है, लेकिन बाप के बच्चे, इसलिए जैसे बाप वाह वाह है, हरेक का दिल में क्या बज रहा है, वाह वाह, बाप के दिल में भी क्या गीत बज रहा है, वाह बच्चे वाह। तीसरी बार बाबा ने कहा, भल नंबर वार है लेकिन हरेक के जीवन का लक्ष्य क्या है। तीसरी बार कहा, नंबर वार होते हुए भी हरेक का जीवन का लक्ष्य क्या है विश्व में। और इसके कारण कल हमारा दैवी संगठन को बाबा ने एक नया रूप दिया, नया शब्द दिया, आज तक हमने पहली बार सुना, कभी नहीं सुना था, कल हमने पहली बार बाबा के मुख से ये संगठन के बारे में बताया कि विश्व में अगर वाह वाह का संगठन देखना हो तो कहां देखने में आएगा, तो क्या हो गया ना हमारा संगठन, क्या हो गया, वाह वाह का संगठन, वाह वाह का संगठन। दुनिया में क्या होता है मालूम है, दुनिया में होता है बाबा के एक अलग मुरली में है, वाई वाई, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्या, क्यों, कैसे, इसका संगठन होता है, वहां प्रश्न होता है उस प्रकार से होता है, क्यों, क्या, कैसे, इस प्रकार से क्यों, क्या, क्या, इसकी लंबी क्यों लगा देते हैं हम। और बाबा ने कहा कल कि ये वाह वाह का संगठन है, और उसको ये देखने कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे तो मालूम पड़ेगा कल कितना बड़ा संगठन था, और सारा ही बाबा के शब्दों में कहे तो वाह वाह का संगठन था। और बाबा क्या कहते हैं आगे चल के कहते हैं कि बाबा वाह वाह का संगठन देख रहे हैं। फिर से कहा, चाहे नंबर वार है लेकिन है वाह वाह, और नंबर वार होते हुए भी सभी प्रभु प्यारे हैं, नंबर वार होते हुए भी सभी प्रभु प्यारे हैं। तो यह संगठन का नया टाइटल बाबा ने दिया, यह संगठन प्रभु प्यारों का है। कितना सुंदर टाइटल हम बच्चों को कल मिला बाबा के मुख से कि यह संगठन प्रभु प्यारों का है। हर एक चाहे नंबर वार है, फिर से चौथी बार बोला, हर एक बार नंबर वार है लेकिन मूल आधार सबका एक ही है, एक बाप, एक बाप। अभी थोड़े दिन पहले साकार मुरली के अंदर आया था अद्वैत मत, अद्वैत मत का बाबा ने संस्कृत का अर्थ जो है, दुनिया में तो अद्वैत मत का दूसरा अर्थ होता है, बाबा ने अद्वैत मत का अर्थ बताया था, एक बाप की मत, उसको कहेंगे अद्वैत मत। इस प्रकार से अद्वैत मत की एक नई परिभाषा बाबा ने दिया था। कल भी इस प्रकार से बाबा ने कहा कि मूल आधार सबका एक ही है, सबके दिल के मुख से क्या निकलता है, वाह बाबा वाह, और बाप से मुख से भी क्या निकलता है, वाह से निकलते बच्चे वाह। हर एक अपने को ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, और शशि बहन आदि को प्रॉब्लम है, कैसे बिठाया जाए, सब चाहते हैं हम आगे बैठे, सब आगे बैठना चाहते हैं, और इसके कारण क्या हो गया, कल बाबा ने क्या किया, चाहे बैठने में आगे पीछे हो, हम बाबा सबको एक समान देखते हैं। वास्तव में बाबा क्या, मैं दूर वाले को पहले देखता हूँ, नजदीक वालों को पीछे देखता हूँ, और ऐसा ही है आज के जमाने में। बाबा ने जो ये दो यहाँ पर बन गए हैं उसके कारण बाबा को देखना, समझना और मुरली सुनना बहुत आसान हो गया है। तो इस प्रकार से दूर बैठे हो या नजदीक बैठे हो, बाप को एक समान देख सकते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा, आगे पीछे हो हर एक बाप के से दिख सके लदे बच्चे हैं, और बाबा सबको उसी रूप से अर्थात शकीलदे बच्चों के रूप से देख रहे हैं। और बाबा फिर से कह रहे हैं कि सबके दिल में कौन है, तो क्या कहेंगे, वाह बाबा वाह, और बाप के दिल में कौन है, हर बच्चा। बाबा ने फिर कहा, नंबर वार है लेकिन शकीलदे सब है, नंबर वार है। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, अंतत्व हो रहेगा 16108 में, एक पहला नंबर में आने वाला आत्मा जो है लक्ष्मी नारायण की आत्मा की गुण और शक्ति आदि, और 16000 108 में लास्ट नंबर पर जो बच्चा होगा बाबा का उसका भी समान होगा, परंतु नंबर अलग अलग होगा, प्राप्ति अलग अलग होगी, अनुभूति अलग होगी। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा सबका भले नंबरवार है, नंबर है पहला नंबर का नंबर पहला नंबर है और 16108 का नंबर 16108 का है, उनसे भी ज्यादा गिनती करो तो 9 लाख का नंबर हो जाता है। तो इस प्रकार से सबका नंबर अलग अलग है, परंतु फिर भी बाबा के साथ प्यार के बारे में बाबा कहते हैं कि सब सकी लदे सब है, मेरा सब बच्चे सकी लदे हैं। फिर बाबा ने सवाल पूछा हुआ है कि आज के संगठन को क्या कहेंगे, आज के संगठन को, कल का जो संगठन था उसको क्या कहा, हर एक बाप का सकी लेता है ऐसा अनुभव करते हो ना। और फिर बाबा ने क्या कहा, सबकी सूरत से ऐसा अनुभव हो रहा है कि सबके दिल में एक बाप है, एक बाप होना चाहिए, वास्तविकता है। हाँ, पर तो क्या होता है कभी कभी बाप के साथ साथ माया भी आ जाती है, परंतु बाबा कहते हैं कि सबके दिल में एक बाप है और बाप भी हर बच्चे को देख मुस्कुरा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। फिर बहुत अच्छी बात सुनाई है, यह मिलन इस समय का मिलन, दो बार मिलन के ऊपर एम्फेसिस दिया, यह मिलन जो आप उस टाइम पर मिले, और फिर बाबा ने कहा इस समय का मिलन कितना महान है, ये वास्तविकता है। कल का मिलन जिन्होंने सुना देखा समझा, और ये मिलन की घड़ी, ये मुलाकात, ये संवाद घड़ी घड़ी नहीं आएंगी, कल के जो मुलाकात हुई और फिर 5000 वर्ष के बाद होगी, कितनी महान मुलाकात है। इसलिए बाबा के साथ का पहचान करना और जानना कितना महान बात है। हम लोग अभी भी याद करते हैं कि साकार बाबा के समय पर कितनी बातें अच्छी होती थी, उस टाइम पर इतना हमको महसूस नहीं होता था, आज महसूस होता है कि साकार बाबा के साथ में रहने का, उनके साथ अनुभव जो करने का जो था, वो हमारे जीवन का एक अनमोल खजाना बन गया। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि मिलन कितना महान है, अर्थात ये मिलन जो है हमको महान बनाने वाला है। हम कितने महान बनते हैं वो हमारे हाथों में है, महान तो है पर उसमें डिग्री होती है, नंबर वार होता है, स्कूल में परीक्षा में पास तो होते हैं, पहला नंबर भी पास होता है और लास्ट नंबर भी पास होता है, पहला और लास्ट नंबर में कितना फर्क होता है, इस प्रकार से इसके अंदर भी है, ये मिलन कितना महान है, ये हमारे हाथों में है। और इसलिए बाबा ने कहा सारे कल्प के अंदर अगर महान समय है तो अब है, सारे कल्प की बात करते हैं। सारे कल्प की बात बाबा कहते हैं कि सारे कल्प के अंदर अगर महान समय है, महान समय तो अब है, इसलिए गायन है संगम युग महान युग है। वास्तव में संगम युग का कारोबार और ज्ञान अभी ही बाबा के द्वारा ही प्राप्त हुआ। मैं अपना अनुभव, मैंने पुरुषोत्तम संगम युग किताब में लिखा हुआ है कि अज्ञान काल में मुझे मालूम नहीं था कि यह संगम युग चल रहा है, क्योंकि हम बाबा के परिचय में 50-51 में आए, उसके पहले बाबा के तो बाबा के दिव्य प्रवेश था, सृष्टि पर हो चुके थे, तो हमें मालूम नहीं था संगम युग क्या है। सब मानते थे, हम भी वो दुनिया की मान्यता के मुताबिक चलते थे कि कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग अभी बच्चा है और अभी तो बहुत चलने वाला है, कलयुग अभी तो खाली 40,000 वर्ष ही बीत गए हैं, इस प्रकार से हम सुनते थे समझते थे। और अब ज्ञान मिला उसके बाद मालूम पड़ा कि संगम युग अभी चल रहा है, कलयुग तो अभी, और स्लोगन भी है हमारा, कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है सतयुग आ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ये संगम युग कितना महान युग है, इस संगम युग की जो प्राप्ति जो है उसकी एक एक सेकंड की कीमत कितनी है। एक बार अभी तक बाबा को पटना के, शायद पटना के थे, मिल रहे थे, बाबा ने कहा, उन्होंने को पटना वालों को कहा कि आपको मालूम है एक सेकंड अगर आप बर्बाद करते हो, एक सेकंड आप बर्बाद करते हो तो कितना नुकसान करते हो, पद्मों का नुकसान आप करते हो। तो मैं पीछे में बैठा हुआ था, तो बाबा समझ गए कि ये बच्चा जो हिसाब किताब करने वाला है, एक सेकंड की कीमत पद्मों की कैसे हो सकती है। हम तो समझते हैं भाई समय की क्या कीमत है, हम बर्बाद करने में एक्सपर्ट है, समय को बर्बाद करना ये हमारा धंधा है, हमारा व्यवहार है, हमारा कारोबार है। तो एक सेकंड की कीमत अगर बर्बाद करते हो तो कैसे पद्मों की कमाई का नुकसान करते हो। तो बाबा ने समझ लिया मेरे सामने देख करके कहा कि संगम युग में जो आप कमाई करते हो कितनी कमाई होती है। मैंने कहा वो तो गिनती नहीं कर सकते। तो क्या संगम युग में जो कमाई करते हो सारा कल्प चलती है, संगम सतयुग में चलती है, उसके बाद त्रेता में चलती है, द्वापर कलयुग में चलती है, लास्ट में 2-3 जन्म में ही हमको नुकसान होता है। तो संगम युग में जो कमाई होती है वो सारे कल्प चलती है, और इसके कारण इसकी गिनती करो 5000 वर्ष के अंदर एक सेकंड की कीमत कितनी हो सकती है। गिनती करो तो मालूम पड़ेगा कि एक सेकंड का नुकसान जो है, एक सेकंड की बर्बादी जो है, एक सेकंड को व्यर्थ संकल्पों में हम बर्बाद करते हैं तो पद्मों की का कारोबार का नुकसान हम करते हैं। अगर ये मालूम पड़े साधारण जो है हमारी फाउंटेन पेन जो है वो भी गुम हो जाती है, हमको दो तीन दिन याद रहता है कि अरे हमारी फाउंटेन पेन गई। यहाँ तो पद्मों की कमाई हमारी जा रही है, परंतु हम इतने पत्थर दिल के बन जाते हैं कभी कभी कि पद्मों की कमाई जाते हुए भी हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते। इतनी सुंदर बाबा की बातें हैं, इसलिए पद्मों की कमाई जो है, इसलिए आप जब भी आप कोई भी बात में समय बर्बाद करते हो तो आप नोट करके रखिए कि एक सेकंड की बर्बादी समय की वो हमको पद्मों की कमाई को बर्बाद करना प्रमाण है। इसलिए याद रहे हमको हमारा समय की कीमत होनी चाहिए। समय की कीमत नहीं होती तो क्या होता है। हमारे गीत है, ड्रामा के अंदर गाया बनाया हुआ उठा गीत है, समय का पंछी उड़ता जाए। जो हमारे गायन के पास गीत होगा मालूम नहीं, ड्रामा में वो गीत था समय का पंछी उड़ता जाए। तो समय का पंछी जो है उड़ता जाता है, उस पंछी के साथ साथ हम भी उड़ते जाते हैं और कलयुग से सतयुग की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार से समय को समझना, समय की इम्पोर्टेंस को समझना, और समझ के इम्पोर्टेंस के साथ साथ उनके आधार पर समय को श्रेष्ठ रूप में उसका इस्तेमाल करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग महान युग है, और आगे बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि बाप दादा इसी महानता से बच्चों से मिल रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे बाबा से मिले कल का वो सब इतना हकीकत है कि सब द्वापर से ऊपर त्रेता यहाँ सतयुग में आएंगे। द्वापर से ऊपर हम जो भी कल संगठन में बैठे थे, जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो द्वापर से ऊपर तो आएंगे। द्वापर से ऊपर आने के बाद कौन सा नंबर होगा, कौन सा पुरुषार्थ होगा, कौन सा हमारा पोजीशन होगा, वो ड्रामा बताएंगे और हमारा पुरुषार्थ बताएगा। आपको मालूम रहे हमारा पुरुषार्थ में क्या होता है, साधारण प्रजा भी हो सकती है और सब इसे थोड़ी ज्यादा महान प्रजा बन सकती है, उसके बाद साहूकार बन सकते हैं, उसके बाद राजा बन सकते हैं, उसके बाद महाराजा बन सकते हैं, और उसके बाद विश्व महाराजा बन सकते हैं। तो हमें नक्की करना है कि हमारा पोजीशन क्या होगा सतयुग त्रेता में, क्या हम साधारण प्रजा में होंगे या साहूकार होंगे या क्या हो गए, ये सब हमारे हाथों में, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। हमने जब योग की प्रदर्शनी बनाई थी तो योग की प्रदर्शनी ब्रह्मा बाबा, हमने बाबा को चित्र बना करके सब भेजे थे। हमने बाबा को लास्ट चित्र बनाने के लिए कहा, बाबा आप लास्ट चित्र आप बना करके भेजो और उसके नीचे की लिखत आप बना करके भेजो। तो बाबा ने वो चित्र बना करके भेजा जो बहुत प्रसिद्ध चित्र है कि पृथ्वी जो है मृत्यु सैया पर सोई हुई है, ऊपर से एटम बम हाइड्रोजन बम गिर रहे हैं और बाजू में सन्यासी कहता है कलयुग अब भी बच्चा है। इस प्रकार का पिक्चर आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बाबा ने वो चित्र बना करके भेजा और नीचे में लिखा आपका भाग्य आपका भविष्य आपके हाथों में, आपका भाग्य आपके हाथों में है, आपका भाग्य न और कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है, आपके भाग्य का आप मास्टर भाग्य विधाता हो। इस प्रकार से इतनी गहराई से हमारे भाग्य के बारे में अगर हम सोचे तो क्या होगा, हम अच्छे में अच्छे जैसे कारोबार कर सकते हैं। तो इसलिए मास्टर भाग्य विधाता हूं मैं अपने भाग्य के लिए, अपना भाग्य और कोई नहीं बना सकता। संस्कृत में भी भर्तृहरि ने कहा है परो दधाति इति गुरुर्भूतिरेषा अहम् करोमि इति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रेण ग्रथितो हि लोकः। इस प्रकार के भर्तृहरि ने भी कहा हुआ है। तो इस प्रकार से हम अपने कर्मों के आधार पर अपना ही जीवन बना रहे हैं। कई कई जगह पर संबंध का बंधन होता है, कई जगह पर बंधन का संबंध हो जाता है। बंधन और संबंध ये हमारे हाथों में है कि हम संबंध में रहते हैं या बंधन में रहते हैं, हमारे हाथों में है हम कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। परिवार में रहते हैं हम लोग, यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी गृहस्थ जीवन में ही रहते हैं। गृहस्थ जीवन में होते हुए भी गृहस्थ जीवन का हमारा जो संबंध है आपस में, वो संबंध है या बंधन है, वो बहुत गहरी बातें हैं। कई बात कई लोग समझते हैं हम संबंध में हैं, पर संबंध में होते हुए भी बंधन में होते हैं। और इसलिए बाबा ने कहा हुआ है, क्या कहा है मालूम है ना, गीता में भी अर्जुन ने लास्ट में कहा है नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, नष्टो मोहा बनना चाहिए संबंधों के अंदर, नष्टो मोहा होना चाहिए और नष्टो मोहा के आधार पर जो है ओरिजिनल स्मृति मैं आत्मा हूं मैं परमात्मा की संतान हूं वो याद आनी चाहिए। जिसको ये स्मृति रही मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं, इसके लिए तब संजय ने कहा कि उसके आगे विजय जो है विजय आदि जो भी है वो सब उनके जीवन चरणों की दासी बन जाएगी। तो इसलिए हम बच्चों को नष्टो मोहा बनना ही पड़ेगा और इसके लिए संबंधों के अंदर संबंध होते हुए भी संबंध क्या बंधन नहीं होना चाहिए। ये सारा ही ड्रामा जो है वो संबंध और बंधन का है। सत्युग त्रेता में संबंध है बंधन नहीं है और त्रेता के बाद द्वापर से बंधन शुरू हो जाता है, बंधन में बंधे हुए हो जाएंगे और इसके कारण क्या हो जाएगा। बाबा कहते हैं आप बच्चों की पंख जो है वो पंख माया काट लेती है, आप उड़ नहीं सकते हैं और इसके कारण क्या हो जाएगा आप जानते हैं। अभी मैं समझता हूँ ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, पीछे बात चालू रखेंगे। ओम शांति। बात चल रही थी गृहस्थ जीवन के अंदर संबंध और बंधन। ये संबंध और बंधन में रहना करने का कारोबार हमारे हाथों में है। बाबा ने जो ज्ञान दिया हुआ है उसके अंदर यही कहा हुआ है कि आप गृहस्थ जीवन में रहते हो घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, विकारों को छोड़ने की जरूरत है और गृहस्थ जीवन को भी उसके द्वारा भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हो। ये बात बाबा ने जो बताई है महाभारत में यही बात की एक गीता है। जिन्होंने महाभारत पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि महाभारत में 14 प्रकार की गीताएं हैं, 14 प्रकार की। एक उसमें जैसे कृष्ण अर्जुन संवाद की गीता है वो एक है जो प्रसिद्ध है, बाकी और भी है, विश्व पितामह की गीता है, ऐसे बहुत सी गीता है, इसमें एक गीता है व्याघ्र गीता, मालूम नहीं आप सबने पढ़ा है या नहीं, महाभारत के अंदर व्याघ्र गीता आती है, व्याघ्र गीता बहुत सुंदर गीता है, शब्द है। एक सन्यासी जो था वो जंगल में तपस्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था तो तर्पण करना होता है, ऐसा हाथ में पानी लेकर के इदम हम इसको इसको देता हूँ इसको देता हूँ, इस प्रकार से तर्पण करना होता है। उतना ऊपर से एक चिड़िया जो है उसने उसका कचरा नीचे हाथ में गिरा और उसके हाथ में वो हाथ में पानी था, उसके अंदर वो चिड़िया का कचरा जो है वो उसके अंदर गिरा तो उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आकर के ऐसे गुस्से में वो चिड़िया के तरफ देखा तो चिड़िया जो है भस्मीभूत होकर के गिर गई। तो सन्यासी को लगा कि अरे वाह मेरे में कितनी ताकत है, मैं अब मेरी दृष्टि के द्वारा एक चिड़िया को भी भस्मीभूत कर सकता हूं। इस प्रकार से उसको गर्व हो गया। फिर वो भिक्षा के लिए शहर में गया, शहर में गया तो एक माता के घर में जाकर के कहा माता को भगवती भिक्षा देगी, तो माता ने कहा ठहरो मैं देती हूँ। एक बार दो बार तीन बार वो सन्यासी ने बोला तो नहीं दिया, माता आई नहीं, तो उसको गुस्सा आ गया कि मैं कौन हूँ, मैं दृष्टि के द्वारा चिड़िया को भस्मीभूत कर सकता हूँ तो ये माता को भी मैं भस्मीभूत करूंगा। इसलिए उसने माता के सामने गुस्से के अंदर माता को भस्मीभूत करने के लिए अपनी दृष्टि फैलाई। तो माता ने कहा कि सन्यासी महाराज मैं वो जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसको आप भस्मीभूत कर सकते हो, मैं तो अपने गृहस्थ में रहने वाली हूँ, मेरा गृहस्थ धर्म जो है मैं निभा रही हूँ, आप आए उसके पहले मेरे लौकिक पति जो है वो आए तो उसके लिए उसको हाथ पग धुलाई किया, उसको पानी पीने पिलाया और उसके बाद उनकी सेवा करने के बाद मैं आपके पास आई। तो बेचारा सन्यासी तो मूंझ गया कि जंगल में मैंने चिड़िया को भस्मीभूत किया, ये माता को कैसे मालूम पड़ा। तो माता ने उससे माता को पूछा कि आपको ये कैसे मालूम पड़ा, तो कहा अभी तो मैं बिजी हूँ, मेरा पति आया है उसको खाना खिलाने का, आप बाजू पड़ोस के गांव में जाइए वहाँ भाई व्याघ्र माना शिकारी जो होता है वो मांस होता है, मांस काट काट करके बेचता है व्याघ्र, तो उसके पास जाओ और वो आपको समझाएगा कि मेरे पास ये शक्ति कैसे आई। तो सन्यासी सोचने लगा एक व्याघ्र शिकारी मांसाहार मांस बेचने वाला वो मुझे क्या ज्ञान देगा, तो उसको अहंकार आ गया। तो माता ने कहा अब अहंकार में मत आइए, व्याघ्र गीता ये जो व्याघ्र है वो भी अपना गृहस्थ व्यवहार का जीवन अच्छे में अच्छी रीत से व्यतीत करता है, आप उनके पास जाइए। तो गया उधर बाजू के गांव में, तो उधर खड़ा रहा थोड़े टाइम के बाद वो व्याघ्र का ध्यान गया सन्यासी के प्रति, सन्यासी उसके पास गए तो उन्होंने वो व्याघ्र ने कहा अच्छा सन्यासी महाराज आइए, आपको वो माता जी ने आपके पास आपको मेरे पास भेजा है ना, तो कहा हाँ आपको कैसे मालूम पड़ा, तो मैं भी गृहस्थ व्यवहार में रह करके कारोबार करता हूँ और मेरा धंधा ही है, मैं धंधा से निर्लेप हूँ, मैं धंधा का बंधन में नहीं हूँ, मैं परिवार का बंधन में नहीं हूँ, तो मैं आपको ज्ञान सुनाता हूँ। इस प्रकार से कर करके व्याघ्र ने गृहस्थ जीवन क्या श्रेष्ठ है, कैसा कारोबार हो सकता है, उस प्रकार की व्याघ्र गीता सुनाई है। बहुत सुंदर व्याघ्र गीता है, जिन्हों को पढ़ने की इच्छा हो महाभारत के अंदर व्याघ्र गीता को पढ़ सकते हैं कि गृहस्थ जीवन कैसे श्रेष्ठ है। हम सब गृहस्थ जीवन में रहते हैं, बाबा ने कहा है कि आप गृहस्थी हो या ट्रस्टी हो ये आपको नक्की करना है। हम सब यहाँ बैठे हुए सब अपने आप से पूछे कि हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो गृहस्थी है या ट्रस्टी है। गृहस्थी अपने को समझेंगे तो हम अपने आप को बंधन में समझेंगे और ट्रस्टी समझेंगे तो निर्बंधन हो जाएंगे, संबंध में आ जाएंगे। तो संबंध और बंधन का फर्क जो है गृहस्थ जीवन के अंदर ही है और इसीलिए ही बाबा का ज्ञान जो है, इसीलिए मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा में ज्यादा उपलब्धि श्रेष्ठ उपलब्धि श्रेष्ठ प्राप्ति यही है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं, जो पहले हम नहीं मानते थे। शंकराचार्य आदि, मंडन मिश्र आदि का जो समाज जो हुआ उसके अंदर यही है कि संन्यास जीवन धारण नहीं किया तो आपका जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। जैन धर्म में भी ऐसा ही है, जैन धर्म में भी ऐसा ही है कि जब तक अगर आपने घर बार छोड़ करके अपना जीवन संन्यास जीवन नहीं धारण किया है तब तक आपको मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति और जीवन मुक्ति चाहिए तो आपको गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ेगा। ऐसी दुनिया की बातें हैं, बाबा कहते हैं कि आपको गृहस्थ जीवन की त्याग करने की जरूरत नहीं है, आपको विकारों को त्याग करने का है और अपनी दृष्टि को बदली करने का है। गृहस्थी मत समझो, ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी समझेंगे तो कारोबार भी अच्छे में अच्छे रूप से कर सकेंगे। तो हम सबको यहाँ जो भी बैठे हुए हैं, ये सुन रहे हैं, चाहे यहाँ पर या घरों में, इन सबको हमारा यही निवेदन है कि अपने आप को गृहस्थी मत समझिए, अपने आप को ट्रस्टी समझ करके कारोबार करेंगे तो सभी बातों में सफलता मिलेगी और हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा और हम श्रेष्ठ भाग्य के निमित्त बन सकते हैं। तो ये व्याघ्र गीता समझने जैसी है। ये व्याघ्र गीता के द्वारा ही बाबा के ज्ञान जो है कि गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन है, वो इनसे सिद्ध हो सकता है। ये पढ़ने जैसी बातें हैं। शास्त्रों में कई बातें बाबा कहते हैं ना, आटा में लूण समान है, जैसी कई बातें हैं। इस प्रकार से व्याघ्र गीता भी आटा में लूण समान गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन है वो सिद्ध करने वाली गीता है। फिर बाबा ने आगे कहा है, बाप क्या कहते हैं, चाहे कोई सा भी बच्चा हो लेकिन बाप का अति प्यारा है, भले नंबरवार है। फिर से नंबरवार शब्द आया, सातवीं बार नंबरवार आया, नंबरवार है, लेकिन बाप को हर बच्चा प्यारा है। बाप का प्यार हर बच्चे को अनुभव में है, इसलिए बच्चे प्यार से क्या कहते हैं, मेरे बाबा। और बाप क्या कहते हैं, बाप क्या कहते हैं, ये समझने की बात है। इतने सब बैठे हुए हैं परंतु बाबा कहते हैं एक एक को हाँ, मेरा बच्चा एक दो से प्यारे है, मुझे एक दो से प्यारे है। एक एक जो है वो यहाँ बैठे हुए एक दो से प्यारे है। एक एक को बाबा प्यार कर सकता है, प्यार दे सकता है, अनुभव करा सकता है। हमारे हाथों में है कितना अनुभव करना है, कितना हमको आगे बढ़ना है, हमारे हाथों में है। हम आगे बढ़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो हमारे हाथों में है। हमारा हाथों के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। परंतु ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं आपको एक हंसी की बात सुनाऊं। एक युगल जो है अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठा हुआ था, उसके पीछे मैं बैठा हुआ था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा ये युगल जो है उसमें कौन आगे है कौन पीछे, वो आप बताएंगे। तो युगल जो थे दोनों पति पत्नी, वो सोचने लग गए कि बाबा क्या बताएंगे। मेरे सामने देखा, क्या हमारी परीक्षा लेते हैं क्या? मैंने कहा नहीं, देखो बाबा क्या कहते हैं आपको, आप दोनों में आगे कौन है। तो युक्ति युक्त तो बोलना है ना, वो भी बाबा से सीखना होता है। बाबा ने कल नहीं कहा एक दो से प्यारे है, इस प्रकार से बाबा ने दोनों को कहा। हाँ, बहुत सुंदर बात कही, दोनों एक दूसरे से आगे हैं, दोनों ही एक दूसरे से आगे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बाबा ने जवाब भी दे दिया कि दोनों आगे हैं और दोनों एक दूसरे से आगे हैं। इस प्रकार से प्यार से कहना, ऐसा कहना चाहिए जिसके आधार पर लोग, सामने वाला जो है, प्यार से हमारी बात को समझे। फिर बाबा ने क्या कहा, आज का दिन मिलन का दिन है। कितने भी बच्चे हैं, कहां भी है, कैसा भी है, लेकिन बाप का प्यारा है। अच्छा है, इसके अंदर बाबा ने नंबरवार शब्द नहीं कहा है। हर एक बाप का प्यारा है, हाथ उठाओ, देखो सभी के हाथ, यहां आके देखो। और फिर दादी जी ने, बाबा ने दादी जानकी को ऊपर स्टेज पर बुलाया। बाबा ने कहा कि बाप के प्यारे लाडले बैठे हैं, कितने साधारण बैठे हैं, सभी बाप के प्यारे तो है ना। यह सीन आके देखो, सब कैसे मुस्कुराते हैं, सबके दिल का हाल शक्ल से दिखाई दे रहा है। ऐसा कह करके दादी जानकी को बाबा ने स्टेज पर बुलाया और दादी जी स्टेज पर आए और सभा को देख करके दादी जी ने भी कहा कि बाबा बहुत अच्छी सभा है। और बाबा ने भी कहा कि बाबा का हर एक बच्चा बाप का लाडला बच्चा है। ऐसा कह करके मुरली समाप्त हुई और उसके बाद मुन्नी बहन ने बोला कि सेवा का टर्न इंदौर का है, 7,000 आए हैं, उसके अंदर हॉस्टल की 150 कुमारियां भी हैं। देखो बाबा ने थोड़े शब्दों में कितनी सुंदर महिमा किया है। सब सेवा के लिए एवर रेडी है। बाप ने देखा हर जोन समय पर अपना पार्ट अच्छा बजा रहा है, हर जोन समय पर अपना पार्ट अच्छा बजा रहा है। आप सब भी हर जोन के सेवा से संतुष्ट है ना। इस प्रकार से कर करके बाबा ने उनसे बात किया। वो बाबा ने उनसे 8:31 को 8:30 मुरली पूरी हुई। 8:31 पर मुन्नी बहन ने ये कहा। उसके बाद 8:33 को मुन्नी बहन ने कहा कि बाबा 500 डबल विदेशी है, 55 देशों से आए हुए हैं। ये 8:33 को बाबा ने कहा। बाबा ने कहा डबल विदेशी ज्यादा आए हैं, डबल विदेशी सभी हाथ उठाओ। फिर बाबा ने दोनों के बीच में बैलेंस रखने के लिए कहा, देश के भी अच्छे निमित्त बने हुए हैं, डबल विदेशी वैसे भी विदेशी पुरुषार्थ में अच्छे हैं, पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं कि इंडिया वाले नहीं हैं, हर एक बच्चा चाहे इंडियन हो चाहे विदेश हो, लेकिन हर बच्चा अच्छे पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। हर एक के मन के अंदर यही है कि मैं नंबर वार आगे रहूं, नंबर वार हर इच्छा है हमारा नंबर आगे रहे। सबकी इच्छा है ना। द्वापर के ऊपर त्रेता और सतयुग में आएंगे तो सबका इच्छा होती है कि सतयुग की आदि से ही हम आए इस सृष्टि पर, तो इसलिए नंबर आगे से सेवा हो, आगे से आगे नंबर लेना है। बाप दादा भी बच्चों का पुरुषार्थ देख खुश होते हैं और बाप से और दादा से सभी का चाहे विदेशी चाहे देशी, हर एक का बाप दादा से दिल का प्यार अच्छा है। और बाप का प्यार भी देश विदेश हर एक बच्चे से दिल का प्यार है, देश विदेश दोनों। मैंने एक परिभाषा बताई हुई है विदेश की। देश तो आप समझ गए, भारत का हम लोग ही है, इसको देश कहते हैं। विदेश का क्या अर्थ होता है? एक नई डेफिनेशन हमने बनाई हुई है। विदेश वी और देश, वी अंग्रेजी का शब्द है, वी मतलब हम, और देश हम भी देश के ही है, इसके लिए उसको कहेंगे विदेश। अगर ऐसा समझेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो देश विदेश के बीच का जो भेद है वो भेद निकल जाएगा। हम सब किसी देश के ही है, देश के ही है, खाली पिछले 2-3 जन्म से ही और देशों में और स्थानों में गए हुए हैं ताकि संगम युग में वहां पर सेवा के लिए काम में आ जाएगा, कारोबार करने में मददगार बन जाएगा, वहां की भाषा को समझ सकेंगे। तो इसलिए पिछले 2-3 जन्मों में ही ये फर्क पड़ता है, बाकी हम सब देशी है। और आप सबको मालूम होगा जानकी दादी को बाबा ने कहा है, जानकी दादी जो है देश और विदेश के बीच में बैलेंस रखने में बहुत अच्छी अनुभवी है। फिर बाबा ने कहा है चाहे नंबर कैसा भी हो, नंबर में आगे पीछे भी हो सकता है, पहला नंबर भी हो सकता है, 16108 का नंबर भी हो सकता है, कि नंबर कैसा भी हो, लेकिन बाप का प्यार लास्ट बच्चे से भी ज्यादा है। क्योंकि हर एक याद में बैठते हैं तो किसकी याद में बैठते हैं? बाप की याद में बैठते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने याद दिलाया। फिर 8:42 पर बाबा ने मुन्नी बनने का बाबा को याद प्यार देना है, तो बाबा ने कहा बाप का सभी बच्चों के लिए, चाहे देशी चाहे विदेशी, हर एक बच्चों के लिए दिल में प्यार है। बाप ने देखा हर बच्चे का भी बाप से प्यार है, तभी तो चल रहे। अगर ये याद सावधानी बाबा ने दिया है, अगर बाप से कनेक्शन नहीं है तो शक्ति कहाँ से रहेंगे। संगम युग में शक्ति कहाँ से मिलती है, बाप से ही मिलती है, और वो शक्ति याद की शक्ति के द्वारा ही मिल सकती है। शक्ति कहाँ से लेंगे, बाप से ही तो शक्ति लेके चल रहे हैं। बच्चों का प्यार बाप से अच्छा है और बाप का प्यार हर बच्चे से है, कहाँ भी है, चाहे देश चाहे विदेश, लेकिन हर बच्चा बाप का प्यारा है, चाहे कोई भी हो, बाप का प्यार चला रहा है। बाप को याद नहीं करेंगे, देखो सावधानी दिया है, बाप को याद नहीं करेंगे तो शक्ति कहाँ से मिलेंगी। शक्ति प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत, एकमात्र स्थान, एकमात्र प्राप्ति का रास्ता है बाप की याद का। बाप को याद करेंगे तो ही शक्ति मिलेंगी। और इसके लिए क्या करने का, बाप को याद करने के साथ साथ बाबा ने कहा है हर एक का संबंध बाप से है। बाप के साथ संबंध तो है, परंतु फिर भी हम बाबा ने कहा है नंबरवार है। कोई गए हमारा बाप से प्यार नहीं है, वो हाथ उठाओ, किसी ने हाथ नहीं उठाया। बाबा ने कहा देखो सब कहते हैं कि हमारा पुरुषार्थ से चल रहे, पुरुषार्थ कितना भी करे, कोई समझते हम पुरुषार्थ से चल रहे हैं तो हाथ उठाओ। इस प्रकार से हाथ किसी ने नहीं उठाया। 8:45 हो गई, उसके बाद स्टेज पर कारोबार चल रहा। मोहिनी बहन जो है उसको बाबा मिले, उसके बाद न्यू के मोहिनी बहन जो है उसको बाबा मिले। उन्होंने कहा उनको जो पाठ बजा रहे अच्छा है, बाबा यहाँ तक लेके आए इसके लिए आपके बहुत बहुत थैंक्स। तो बाबा ने जवाब दिया कहाँ भी हो हर बच्चे का याद प्यार बाप के पास पहुँच जाता है, कोई भी दूर नहीं है, चाहे अमेरिका में बैठा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, चाहे भारत में, कहाँ भी बैठा हुआ है बाबा, इसने कहा कोई भी दूर नहीं है, सब बाप के दिल में है, सब बाप के दिल में है, इसलिए सब बाप के दिल में। इसलिए क्या होगा, बाबा ने कहा सब बाप से नजदीक है, दूरी लगती भी नहीं है। मोहिनी बहन ने कहा दूरी लगती भी नहीं है, बाबा ने कहा दूर है भी नहीं। इस प्रकार से उनका हो गया। और फिर बाबा ने कहा सभी बाप के दिल में समाये हुए है, सभी दिल में है, सभी दिल में है। और फिर बाबा ने कल नया शब्द यूज किया, पहले दिलाराम शब्द आदि यूज किया हुआ था, कल कहा दिलवर कौन है, एक नया शब्द यूज किया अपने लिए, दिलवर कौन है। हाँ, दिलाराम के शब्द जो था हमारे सिल्लू बहन आदि को प्रश्न हो गया जब पहली बार बाबा ने दिलाराम शब्द यूज किया, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या किया जाए, तो कल फिर नया शब्द है दिलवर कौन है। बाप दादा ही तो दिलवर है, बच्चों का दिल भी बाप के साथ है, बिना बाप के साथ कोई है नहीं। और एक बाबा ने अभय वचन दिया हुआ है, जो समझेंगे और उसके आधार पर चलेंगे तो उसकी प्राप्ति हो सकती है। बाबा ने कहा है सब हम सब बच्चे साथ है, साथ रहेंगे, और सभी साथ के अनुभव में रहते हो ना, हाथ उठाओ। इस प्रकार से बाबा ने सबको साथ में है। उसके बाद भी उसके बाद मैंने बाबा को पुणे का जगदम्बा भवन जो है बन रहा है, उसका जो डिजाइन जो है आर्किटेक्ट की डिजाइन आई वो मैंने दिखाई। आप सबको मालूम रहे हमारी मातेश्वरी जो है उन्होंने 1965 में वो अव्यक्त हो गए, अव्यक्त 65 में हो गया, 2015 चल रहा है, अर्थात 50 वर्ष पूरा हो गया मम्मा को अव्यक्त होने में, शारीरिक रूप में अव्यक्त होने के, ये गोल्डन जुबिली वर्ष है। तो इस प्रकार से मम्मा का है जो यादगार है, और यादगार में इसलिए है क्योंकि मम्मा ने पुणे की सेवा का शुरुआत की थी और उसके पालना भी की, और लास्ट मुरली भी जो है बाबा की मम्मा की पुणे में ही चली थी, तो इसलिए जगदम्बा भवन का प्लान दिखाया और फिर बाबा ने हमको कहा मतलब हमको देख करके सारी सभा को कहा जितना भी बढ़ाना चाहो इतना बढ़ा सकते हो, चाहे जगदम्बा चाहे कोई कार्य के निमित्त कोई बच्चा भी है, हर एक बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। बाप दादा को खुशी है कि हर एक बच्चा आगे बढ़ रहा है, जितनी भी ताकत है उतना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। हमारा अच्छा पार्ट कब बनेगा, जितनी हमारे में ताकत होंगी, जितनी ताकत होंगी इतना हमारा अच्छा पार्ट बजेगा। हर एक बच्चे में उमंग उत्साह है, बाप दादा खुश है, हर एक बच्चा सदा अपने पुरुषार्थ में लगा हुआ है और लगा रहेगा। इस प्रकार से पुणे के बारे में बाबा ने हम लोगों को वरदान दिया, पुणे वालों को जगदम्बा भवन, पुणे वाले खुश हो गए होंगे, जगदम्बा भवन का प्लान हमने बाबा को दिखाया। वो फिर बाबा ने कहा सभी अच्छे पुरुषार्थ में आगे बढ़ रहे, यह देख बाप दादा खुश हो रहे। कुछ भी हो, बाबा ने क्या बताया कल, कुछ भी हो लेकिन अपना पुरुषार्थ अपने साथ में है और सारा परिवार भी साथ है, अकेला कभी नहीं। सम बाबा ने कहा भी है अकेले नहीं हो, साथी है और साथ रहेंगे। साथी है परमात्मा बाप, साथी भी है और साथ रहेंगे। और कैसे साथ रहेंगे वो बाबा ने बताया कि हरे के दिल में एक बाप की याद है। फिर ब्रजमोहन भाई ने दिल्ली की बात सुनाई, दिल्ली में इंडिया गेट पर 8 नवंबर को प्रोग्राम होने वाला है सुबह 6 से 8 का, उसके बारे में बताया। उसके अंदर बाबा ने एक सावधानी हम सबको दिया, ये कोई नहीं समझे कि दिल्ली का प्रोग्राम है, सबका बाप है और सबका प्रोग्राम है, भले कोई नजदीक है कोई दूर है लेकिन है सभी का। वही उमंग उत्साह से और इसको ही आगे बढ़ाना है, कहाँ भी प्रोग्राम है लेकिन हमारा है, एक ही परिवार है, एक ही सबका बाप है, एक है चाहे अनेक दिखाई देते हैं, इतने हम वैरायटी दिखा देते हैं, परंतु बाबा कहते हैं वैरायटी बोले दिखाई देती है परंतु सब एक ही है। और यही विशेषता यहाँ की है, बाप के दिल में सब एक ही है, बाप के दिल में कोई टुकड़े टुकड़ा नहीं है। सिनेमा का गीत था ना, एक दिल के हजार वो टुकड़े हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, वो सिनेमा के गीत में हो सकता है परंतु बाप के दिल के अंदर बाप का दिल का टुकड़ा हो ही नहीं सकता है। बाप के दिल में हम सब बच्चे समान ही है। इस बनारसी भाई ने बाबा को सेवाओं का कुछ बुक दिखाई, बाबा ने कहा बस खुश होते हैं, सब मिल करके चल रहे हो और चलते रहेंगे। फिर भोपाल भाई ने उदयपुर के बारे में पूछा और उसके बाद ओम प्रकाश भाई ने बाबा से बात किया और ओम प्रकाश भाई ने कहा मेरी तबीयत ठीक है, मैं पहली बार बीमार हुआ हूँ, सबके मदद से बाप के साथ से आगे बढ़ते रहो, इस प्रकार की बात कही। मैंने शुरू में बता दिया इस प्रकार से ये कारोबार हुआ कल की मुरली का। और 9:35 पर बाप दादा हम बच्चों से विदाई लेकर के गए। कल बाबा बहुत खुश थे, मैंने देखा ऐसा जो गीत बजता था ना तो उसका अंदर बाबा भी ऐसे ऐसे करता था। बाबा भी संगीत का अभ्यासी है, संगीत बाबा को भी पसंद है और संगीत बाबा को पसंद है, उसके कारण संगीत के ताल के अंदर बाबा भी झूम रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। हमने देखा कल स्टेज पर बैठते हैं ना तो बाबा का ये जो झूमना जो है संगीत के ताल में वो दिखाई स्पष्ट दिखाई पड़ता था। तो इस प्रकार से बाबा का कल सारी मुरली पूरी हुई 9:35 को और उसके बाद हम बाबा ने विदाई लिया और 7:47 पर बाबा आए, 7:56 को बाबा ने मुरली चलाई शुरू की और 9:35 तक बाबा हमारे साथ में रहे। बाबा की कमाल तो यही है, और कितना थोड़ा समय के लिए आए तो भी सभी बच्चों को बाबा ने खुश कर दिया। और इसलिए बाबा ने सपना अपने लिए शब्द बताया, दिलवर है, दिलवर है, दिलाराम हो दिलवर कहो। इस प्रकार से बाबा ने अपने लिए भी अपनी महानता का परिचय कराया। इसलिए इस प्रकार की मुरली जो कल की है, हम अच्छी रीति से उसको याद रखें, याद करें, और उसके अंदर जो है बाबा के दिल में हम हैं और हमारे दिल में बाबा है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। और जहां तक हो सके नंबर वार शब्द निकल जावे और सब हम पहला नंबर बन जावे, पहला नंबर के अंदर अर्थात सत्योगी आदि के दुनिया के अंदर इस सृष्टि पर आ सके, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। और इस पुरुषार्थ के अंदर सबको सफलता मिले, यही आज की मुरली का अर्थात कल की मुरली का सार है कि सब नंबर वार के बदले में नंबर वन बने और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करे, श्रेष्ठ भाग्य बनावे और अपना मास्टर भाग्य विधाता का पार्ट अच्छे में अच्छी रीति से अदा करें। यह हुआ, 12:30 बज गया है, 12:30 तक मुझे पूरा करना था इसलिए मैंने इसको पूरा किया। अब 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर आगे का कारोबार चलेगा। अभी ओम शांति, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बता दूं, एक बार बाबा ने मुरली के बाद सबने ताली बजाई तो बाबा ने कहा बच्चे ताली तो बजाई परंतु आप श्रेष्ठ बनकर दिखाओ तो बाप ताली बजाएगा। इस प्रकार से हम सब श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे तो ये बाप हमारे लिए ताली बजाएंगे। हम ताली बजाए वो अलग बात है और बाप हमारे लिए ताली बजाए वो जीवन का श्रेष्ठ अनमोल खजाना है। तो ऐसे हम बाबा के अनमोल खजाने के रूप में श्रेष्ठ जीवन बनावे, यही कल की मुरली का सार है। ओम शांति।